नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत ने इस महीने की 15 तारीख को अलास्का में होने वाली बैठक के लिए अमेरिका और रूसी संघ के बीच बनी सहमति का स्वागत किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान सहित 6 विमानों को मार गिराया गया। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेजी से फैलती जंगलों की आग को देखते हुए हजारों लोगों को घर खाली करने को कहा गया। सूडान के उत्तरी कोर्डोफान में सूडान अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमलों में 16 नागरिकों की मौत और कई घायल। और नागासाकी आज शहर पर परमाणु हमले की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस महीने की 15 तारीख को अलास्का में होने वाली बैठक के लिए अमेरिका और रूसी संघ के बीच बनी सहमति का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बैठक से रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने और शांति स्थापित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दोनों पक्षों के बीच शांति बहाली के लिए होने वाली बैठक के पक्ष में है और इस तरह के प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार को अलास्का में मुलाकात होनी है। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने 15 अगस्त को होने वाली इस बैठक की घोषणा की है, जिसकी क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है। प्रवक्ता ने बताया कि अलास्का की रूस से निकटता को देखते हुए इस स्थान का चयन उचित है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि फैसला लेने की किसी भी प्रक्रिया में यूक्रेन को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए यूक्रेन सभी भागीदारों के साथ सहयोग के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट।
इस बैठक की घोषणा ट्रंप के उस संकेत के कुछ ही घंटों बाद हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ सकता है। इस युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई थी। ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में कहा था कि 3.5 साल से चल रहे इस युद्ध में बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनी मारे गए हैं और ये मामला बहुत जटिल है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों की अदला बदली दोनों पक्षों के हित में होगी। अभी तक समझौते को स्वीकार करने के मामले में यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों का मत स्पष्ट नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति के बीच शांति की शर्तों को लेकर गहरे मतभेद हैं। ज़ेलेंस्की पहले भी क्षेत्रीय रियासतों के लिए किसी भी पूर्व शर्त को अस्वीकार कर चुके हैं। विश्व दर्पण के लिए वीरेंद्र कौशिक।
भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 विमान मार गिराए हैं। बेंगलुरु में आज आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यान को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 विमान और एक अवाक्स विमान मार गिराया। उन्होंने शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर हुए हमलों का भी जिक्र किया, जिसमें हमारी मिसाइलों ने F-16 जैसे कुछ विमानों को नष्ट कर दिया था।
We have indication of at least one AWC hangar and few F-16s which are under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from fighter aircraft or from S-400, we have at least 5 fighters confirmed killed and one large aircraft which could be either an Alent aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill.
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सिंगापुर को उसके 60वें राष्ट्रीय दिवस परेड के अवसर पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन और सिंगापुर की सरकार तथा लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय दिवस समारोह में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब सिंगापुर पुलिस बल ने कल फिल्म कुली के एक तमिल गाने का एक इंस्टाग्राम रील साझा किया। इस रील ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और 20 घंटों के भीतर लगभग 45 लाख लोगों ने इसे देखा। सिंगापुर ने आज पदांग में सशस्त्र बलों और नागरिक इकाइयों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिवस परेड के साथ स्वतंत्रता के 60 वर्ष का जश्न मनाया, जो उसकी हीरक जयंती का प्रतीक है। राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और संसद सदस्य शामिल हुए। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। दक्षिणी कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी के बीच तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं। कैलिफोर्निया के वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग के अनुसार गुरुवार को भड़की घाटी की आग तेजी से बढ़कर लगभग 19.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि लॉस एंजेलिस काउंटी में 5 क्षेत्रों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जहां लगभग 2,700 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 700 इमारतें प्रभावित हुई हैं। इस भीषण आग को बुझाने के लिए लगभग 400 कर्मियों को तैनात किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बढ़ते तापमान के कारण अमरीका में जंगल की आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। सुनिए ये रिपोर्ट।
WMO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के कई क्षेत्रों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। समुद्र की सतह का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। जुलाई में यूरोप में लू की स्थिति ने विशेष रूप से स्वीडन और फिनलैंड को प्रभावित किया, जहां तापमान असामान्य रूप से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। WMO ने कहा है कि पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया, दक्षिण मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों, दक्षिणी पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। दक्षिण पश्चिम ईरान और पूर्वी इराक में अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। इससे अत्यधिक गर्मी और विनाशकारी जंगल की आग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। विश्व दर्पण के लिए चारू सक्सेना।
दूसरी ओर चीन के गांसू प्रांत के युझोंग काउंटी में पहाड़ी क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण 13 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग लापता हैं। प्रांतीय राजधानी लानझौ के अंतर्गत आने वाले युझोंग और लानझौ के अन्य इलाकों में बृहस्पतिवार शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ आ गई है। कल दोपहर तक 220.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। खोज और बचाव अभियान जारी है। युझोंग में अब तक 9,828 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सूडान के उत्तरी कॉर्डोफन राज्य में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के हमलों में 16 नागरिक मारे गए हैं। सूडान के चिकित्सकों के एक समूह ने बताया कि यह हमला बृहस्पतिवार शाम मरकज अल जियादिया गांव में हुआ। हमले में 8 लोग घायल हुए हैं और 6 लापता हैं। चिकित्सकों के समूह ने हमले की निंदा करते हुए इसे एक युद्ध अपराध बताया है। डॉक्टरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से RSF पर दबाव बनाकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। वहीं एक दुखद खबर आई केन्या से, जहां देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अंतिम संस्कार के बाद लोगों को घर ले जा रही एक बस के खाई में गिर जाने से 25 लोगों की मौत हो गई। बस पश्चिमी शहर काकमेगा से किसुमू शहर जा रही थी। न्यांजा प्रांत के यातायात अधिकारी ने बताया कि चालक के नियंत्रण खोने से यह घटना हुई। जापान के नागासाकी में परमाणु हमले की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज हजारों लोगों ने प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। वहीं महापौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक संघर्ष दुनिया को फिर से परमाणु युद्ध की ओर धकेल सकते हैं। एक रिपोर्ट।
नागासाकी शहर 9 अगस्त 1945 को उस वक्त तबाह हो गया जब शहर पर अमेरिका ने 10,000 पाउंड का प्लूटोनियम 239 बॉम्ब गिराया था। उसका उपनाम फैटमैन था। इससे शहर के 2,00,000 लोगों में से लगभग 27,000 लोग तत्काल मारे गए। 1945 के अंत तक तीव्र विकिरण जोखिम से मरने वालों की संख्या लगभग 70,000 तक पहुंच गई थी। नागासाकी का विनाश अमरीकी यूरेनियम 235 बॉम्ब द्वारा हिरोशिमा को नष्ट करने के 3 दिन बाद हुआ था। 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने इस महीने की 15 तारीख को अलास्का में होने वाली बैठक के लिए अमेरिका और रूसी संघ के बीच बनी सहमति का स्वागत किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान सहित 6 विमानों को मार गिराया गया। सूडान के उत्तरी कॉर्डोफान में सूडान अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमलों में 16 नागरिकों की मौत और कई घायल, और नागासाकी आज शहर पर परमाणु हमले की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।